प्रसंग है। तो अंतिम, बिल्कुल अंतिम इसका जो कुछ लाइनों में लिखा गया है कि शील प्रभुपाद ने, जब शील प्रभुपाद ने अमेरिका से प्रस्थान किया, यानी शील प्रभुपाद जब वापस जा रहे थे भारत की ओर, तो भक्त जानते थे कि वे उनके साथ तब तक बने रहेंगे जब तक भक्त उनके उपदेशों का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त यह बात भी थी कि वे उनसे विदा हो रहे थे तो उनके पास वापस भी आएंगे, उनको ऐसी उम्मीद थी। अभी शील प्रभुपाद जा रहे हैं, लेकिन ये प्रसंग मुझे जो देखा कि 1977 की बात है, अगला अध्याय शुरू होता है जनवरी 1977 में, तो शायद ये दिसंबर की बात होगी या फिर उस जन हो सकता है जनवरी की बात हो। तो लेकिन 1977 के बाद फिर शील प्रभुपाद, क्योंकि शील प्रभुपाद ने 1977 में ही अपना इस धराधाम पर लीला को समाप्त किया था, तो फिर शायद वो वापिस नहीं गए यहाँ से। लेकिन भक्तों को ऐसी उम्मीद थी कि वे उनके पास वापिस भी आएंगे। वे भारत से न्यूयॉर्क आए थे, अब वे भारत लौट रहे थे। वहां से वे पश्चिम पुनः आएंगे। वे पूर्व और पश्चिम के बीच निरंतर यात्रा पे थे, दोनों संस्कृतियों को एक में जोड़ रहे थे, लंगड़े व्यक्ति को अंधे आदमी से। जिसके पास भारत के पास जैसे जिस पर से डायरेक्शन है, लेकिन उसको चलने की कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, और अंधा व्यक्ति जिसके पास पांव है चल सकता है, लेकिन उसको पता नहीं है किस दिशा में जाना है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य प्रभुपाद इसको निभा रहे थे, लंगड़े व्यक्ति को अंधे व्यक्ति से जोड़ने का, यानी ताकि दोनों ही अपने सही गंतव्य पे या अपनी सही डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकें। वे अर्जुन की तरह संघर्ष कर रहे थे, नारद मुनि की तरह निरंतर यात्रा कर रहे थे। इस तरह वे परम ईश्वर कृष्ण की महिमा का प्रसार कर रहे थे। वे कभी रुकने वाले नहीं थे, जो निष्ठा पूर्वक उनका अनुगमन करते हैं वह सदैव उनके साथ होंगे, ऐसा भक्तों का विश्वास था। वे सदैव उनके साथ होंगे। लेकिन अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो शील प्रभुपाद अब उनके साथ नहीं थे, कुछ समय बाद नहीं रहेंगे, ऐसा आगे वर्णन आएगा, या अब हम देखें तो ऐसा वर्णन नहीं है। लेकिन जो वे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो भक्त जानते थे कि वे उनके साथ तब तक बने रहेंगे जब तक भक्त उनके उपदेश का पालन करते रहेंगे। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी और हमने सोचा कि थोड़ा इसके विषय में मैं देखूं। तो मेरा तो इतना अपना अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने देखने का प्रयास किया। तो मुझे भक्ति विकास महाराज की एक पुस्तक में, उनकी की पुस्तक का नाम है माई मेमोरीज ऑफ शील प्रभुपाद, भक्ति विकास महाराज की पुस्तक है। तो उसमें वो उसमें उन्होंने एक पूरा एक कह सकते हैं टॉपिक लिखा है, एसोसिएटिंग शील प्रभुपाद विद हिज वाणी, कि शील प्रभुपाद का संग किया जाए उनकी वाणी के आधार पर। और यहाँ पर भी यही बात है कि उनके उपदेशों का पालन जब तक वे करते रहेंगे तब तक भक्त उनके साथ बने रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें भक्ति विकास महाराज जी ने बताई, जो उसको मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो अगर उनका पर्सनल रूप से संघ देखा जाए भक्ति विकास महाराज का, तो पर्सनल एसोसिएशन जिसको वपु संघ हम कह सकते हैं, दो प्रकार के संघ आप सब जानते होंगे, वाणी संघ और वपु संघ। वाणी संघ जो उनके उपदेशों के माध्यम से, उनसे उनके निर्देश के माध्यम से, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से, उनकी पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, और वपु संघ जो शारीरिक रहकर उनके उनके समीप रहकर, गुरु के समीप रहकर, भक्तों के समीप रहकर उनकी सेवा माध्यम करके जो प्राप्त किया जाता है दर। तो वपु संघ भी तब पूर्ण रूप से सफल होता है जब वपु संघ करते हुए वाणी का संघ किया जाए। तो वाणी संघ और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भक्ति विकास महाराज जाते बताते हैं कि हालांकि मेरा प्रभुपाद के साथ पर्सनल रूप से वपु संघ अगर देखा जाए तो बहुत कम हुआ, इस बात की पुष्टि प्रभु जी कर सकते हैं। मेरे को ऐसा जो मेरे को ध्यान आ रहा है कि महाराज बताते हैं अपने शब्दों में कि प्रभुपाद के साथ बहुत कम मेरा वपु संघ हुआ है, लेकिन मैं अभी भी प्रभुपाद के संघ को अपने जीवन में पूर्ण रूप से महसूस करता हूँ। और वो बताते हैं कब, जब मैं शील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ, और ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि शील प्रभुपाद मुझसे अभी भी पर्सनल रूप से बातें कर रहे हैं, और वो करते हैं, और फिर वो इस बात की प्रभु भक्ति विकास महाराज पुष्टि करते हैं कि हाँ वो करते हैं। फिर अपने एक प्रभुपाद के एक लेटर को उद्धृत करते हुए भक्ति विकास महाराज बताते हैं कि कि श्री प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा अपने एक पत्र व्यवहार में, और उसको प्रभुपाद बताते हैं कि मेरी पुस्तकों में दिए गए निर्देश पर्सनल इंस्ट्रक्शन के समान, बिल्कुल उनके समान है। जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें यह मानना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण से पर्सनल इंस्ट्रक्शन रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि फिर आगे लिखते हैं देयर इज नो फिजिकल बैरियर इन द केस ऑफ स्पिरिचुअल अफेयर्स, यानी कि इसके बीच में कोई भौतिक रूप से कोई बाधा नहीं आती जब हम आध्यात्मिक विषयों की बातचीत करते हैं, तो उसमें कोई भौतिक बाधा नहीं आ सकती। तो ये फिर आगे भक्ति विलास महाराज बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का अध्ययन करने से क्या होता है और ये पुस्तकें आखिरकार क्या हैं। वो सबसे पहले अपने प्रश्न को कोट करते हुए बताते हैं कि मेरे अपने जीवन में, और बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनके अपने जीवन में हम देखें तो उनकी कृष्ण भावना में की शुरुआत हुई है पुस्तकों का अध्ययन करने से। और अपना पर्सनल एग्जाम्पल कोट करते हुए बताते हैं कि कैसे एक कृष्णा बुक ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद की किताबें कोई साधारण किताबें नहीं है। अगर उनको देखा है साधारण किताब कैसे, अगर कोई हम साधारण किताब लेंगे तो उसको किस प्रकार से हम देखेंगे कि ये कागज के पन्ने हैं और इस पर इंक के माध्यम से कुछ लिखा गया है, लेकिन ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें केवल यह नहीं है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वास्तविक रूप से भगवान का कृपामय अवतार है लिखित रूप में, जो कि हमें दी गई है एक चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से। तो भगवान के एक चुने हुए प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद, जिनको स्पेशल भेजा गया, वो अपने शब्दों में बताते हैं कि मुझे यहाँ पुस्तकें लिखने के लिए भेजा गया। तो भगवान का एक बहुत, ये मेरे को बहुत स्ट्राइकिंग लगा कि भगवान का लिखित अवतार है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, यानी कि हम भगवान श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का संग करके भगवान के साथ ही अपना डायरेक्ट एसोसिएशन कर सकते हैं। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए हर एक शब्द में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विद्यमान है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे इतने सारे जीवों का जीवन परिवर्तन हो जाता केवल श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करने से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने हजारों लोगों का, हमने अपने जीवन में भी कई किताबें पढ़ी होंगी और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे ग्रंथों का भी अध्ययन किया है, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाता, उनके आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते, लेकिन श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के लोगों के जीवन में, सिर्फ पुस्तकें पढ़ने के माध्यम से, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ वेरी फेमस ऐंद्रा प्रभु। उनको, ऐंद्रा प्रभु को की पत्नी को बुक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ये पुस्तक प्राप्त हुई थी, ईशोपनिषद, और जबरदस्ती उनको, ऐसे कई बार ऐसा होता है कि जबरदस्ती उनको दे दी जाती है जिसकी कोई रुचि नहीं होती, फिर भी किसी तरह से उनको दे दी गई। और वो घर पे आई तो उनके पति ऐंद्रा प्रभु जो कि म्यूजिशियन थे, उनकी तरफ ये बुक दे दी, हो सकता है ये तुम्हारे काम की पुस्तक हो। तो उनको ये कवर पेज बहुत अट्रैक्टिव लगा, शायद उस वक्त भी यही कवर पेज था या भगवान के फोटोग्राफ थे, और उन्होंने पुस्तक पढ़ना शुरू किया। पूरी रात में वो पुस्तक को पढ़ लिया और फिर सुबह वहां से निकल गए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए। तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि सबको ऐसा करने की आवश्यकता है, एक रात में पुस्तक पढ़े और पूरे अगले दिन फुल टाइम हो जाए, लेकिन हाँ अपनी कॉन्शियसनेस के रूप से हम फुल टाइम जरूर हो सकते हैं, अपने कृष्ण भावनामित होने के लिए दृढ़ हो सकते हैं और अपने जीवन को भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित करने का विचार जरूर बना सकते हैं, या ऐसा दृढ़ निश्चय कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद ऐसे कई लोगों के जीवन में हुआ है। और फिर आगे वो बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें कोई साधारण किताबें नहीं है, और उसको क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसे कई बार हमारे मन में भी विचार आता है और कई बार हम ऐसे लोगों के माध्यम से भी सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें देखा जाए तो साधारण बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई हैं, बहुत ही सरल। लेकिन ये हो सकता है कि अगर इसको उस दृष्टि से देखा जाए कि हाँ कितना सुंदर प्रेजेंटेशन किया गया किताबों में, कितना अच्छा तरीके से लिखा गया, उस दृष्टि से अगर सिर्फ उसकी उस बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो हो सकता है हमें दिखने में साधारण लगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोगों के हृदय को छूने वाली है और लोगों के हृदय में परिवर्तन करने वाली है, क्योंकि इनके अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसकी कोई समानता नहीं है। और वो शक्ति इसलिए आती है क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण और कि उन्होंने सिर्फ भगवान का गुणगान इसके इन पुस्तकों के अंदर किया है। और कई बार ऐसा लगता है कि श्रील प्रभुपाद की किताबें बहुत बेसिक है या प्राइमरी लेवल की किताबें हैं, अगर हमें कुछ हायर फिलोसफी को प्राप्त करना है तो उससे पहले आप एक बार श्रील प्रभुपाद की किताब पुस्तकों को पढ़ लीजिए और उसके बाद आप आगे कि हायर पुस्तकें, हायर फिलोसफी, डीप फिलोसफी को और पढ़ने के लिए आपका बेसिक फाउंडेशन फिर तैयार हो जाएगा और उसके बाद आपको दोबारा इन पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने शब्दों में कि आपको पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होने के लिए जो भी चाहिए वो मेरी पुस्तकों में पूर्ण रूप से समान है, आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस बात की पुष्टि करने के लिए भक्ति विकास महाराज कहते हैं थोड़ा सा कि एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, सब कुछ मतलब सब कुछ विद्यमान है शील प्रभुपाद की पुस्तकों में। और इस बात की पुष्टि करने के लिए भी एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से एक बहुत गहरा कुआं होता है कि जिसका हमें स्तर प्राप्त नहीं होता और वो आपको अभी भी कई आध्यात्मिक स्थानों पर प्राप्त होंगे, तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें देखने में साधारण प्रतीत हो सकती हैं लेकिन उसके अंदर कितनी गहराई है ये जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको तभी पता चलेगा। तो उसमें गहराई से जाने के लिए आपको उनका अच्छे से गहन अध्ययन करना पड़ेगा, उनके निर्देशों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा और फिर आप उसकी गहराई को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। और फिर वे आगे बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का भाव क्या है। वो बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें अगर वैसे लिटरली या आध्यात्मिक वर्ल्ड में देखा जाए तो उनकी बहुत सराहना हुई है और उनको टेक्स्ट बुक्स के रूप में कई यूनिवर्सिटीज में भी एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन वे इससे कहीं ज्यादा है कि एक यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक्स अगर हम उसका देखें तो वो बात हमारे वास्तविक जीवन में उन टेक्स्ट बुक का हम व्यवहारिक रूप से कोई ज्यादा उसको अपने जीवन में अपना नहीं पाते, लेकिन वो बताते हैं कि इसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। और किस भाव से श्रील प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी हैं, सबसे पहले तो वो ये बात लिखते हैं कि हर एक लाइन में सबसे पहले श्रील प्रभुपाद ने बताते हैं कि हमें पूर्ण रूप से अपने आप को शरण ग्रहण करनी है भगवान श्री कृष्ण की। तो हर एक शब्द में, हर एक लाइन में श्रील प्रभुपाद का ये भाव उद्धृत होता है, प्रकट होता है। इसीलिए वो कृष्णा बुक में बार बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण को की शरण हमें प्राप्त करनी है इसके बारे में वर्णन करते हैं। और फिर जैसे ही, और वे बताते हैं कि जैसे हम इसको और पढ़ते चले जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ ये कितना, हमें ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये कितना ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, इस ज्ञान का प्रसार हमें भी करना है, लोगों तक इस ज्ञान का प्रचार बताना है। तो ये दो भाव श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से प्रकट होते हैं। और फिर वे आगे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की प्रशंसा करते हैं, उनके सामने नतमस्तक करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि मैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को प्रणाम करता हूँ, उनकी पूजा अर्चना करता हूँ और मैं श्रील प्रभुपाद की पूजा करता हूं जो अपनी पुस्तकों के रूप में मेरे सामने प्रकट हुए और उन्होंने मेरे जीवन को बचा लिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद से जुड़े और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया और वो कह सकते हैं कि हाँ मेरे जीवन को बचा लिया गया। अदरवाइज तो भौतिक जीवन में लिप्त रहकर हम पूर्ण रूप से भगवान से अलग थे, लेकिन ये इन पुस्तकों को पढ़ने के माध्यम से हमें भगवान की ओर जाने की दिशा प्राप्त हुई और फिर हम उस रास्ते पर जुड़ पाए। तो श्री प्रभुपाद को पूर्ण रूप से गुणगान करते हैं और वे बताते हैं कि श्री प्रभुपाद की पुस्तकें एक हीट सीकिंग मिसाइल्स की तरह है, मुझे इसका शायद हिंदी में कैसे इसको बताया जाए समझ नहीं आ रहा, हीट सीकिंग मिसाइल्स की तरह है, जो क्या करते हैं हमारे हमारे तो प्रभु जी बता आपका पीछा करने वाली मिसाइल, जो भी आप समझ जाएंगे कि भी बहुत साधारण इंग्लिश शब्द है, बहुत मुश्किल नहीं है, हीट सीकिंग मिसाइल्स जो कि ढूंढ रही है ऐसे लोगों को किस और उनको कृष्ण भक्त भक्त बनाने के लिए, और ये किस प्रकार से उनको भक्त बनाती है कि उनकी जो फॉल्स ईगो झूठा अभिमान मिथ्या अहंकार, समझ आता हूँ मेरी हिंदी भी गड़बड़ है और इंग्लिश भी गड़बड़ है, तो मिथ्या अहंकार की जो सबसे मिथ्या अहंकार की हमारे चेतना के ऊपर परत बताई जाती है, उसमें जो सबसे गहरी और मोटी परत होती है वो मिथ्या अहंकार की होती है, आठ जो परत होती है उसमें एक लेयर दूसरी लेयर से 10 गुना मोटी होती है, और सबसे ज्यादा जो मोटी परत होती है वो मिथ्या अहंकार की परत होती है। तो मिथ्या अहंकार की परत को श्री प्रभुपाद की पुस्तकें हमारे मिथ्या अहंकार की जो सबसे मोटी परत है उसमें छेद करके हमारी कॉन्शियसनेस या हमारी सोल तक पूर्ण रूप से पहुंच जाती है, और फिर हमारी कॉन्शियसनेस को इस तरह से उजागर कर देती है कि हमारे मन में भाव आ जाता है, ओ कृष्ण मैं आपको भूलकर दुख प्राप्त कर रहा हूं, कैसे मैंने आपको भुला दिया। तो ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का गुणगान है, श्रील प्रभुपाद ने महत्वपूर्ण पुस्तकें हमें दी हैं, तो हम सबको चाहिए कि इन श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का हम नियमित रूप से अध्ययन करें, जो कि मैं भी नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मैंने इस गुणगान को करने का प्रयत्न किया ताकि मैं भी इस महत्वपूर्ण बात को समझ पाऊं और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़कर अपने जीवन में कुछ सुधार ला पाऊं, और ये ही श्रील प्रभुपाद का वास्तविक रूप से संग करने का हमारे पास एक मौका है। तो अब हम नया अध्याय शुरू करेंगे, हरे कृष्ण गाएं प्रकरण 51, हरे कृष्ण गाएं और संघर्ष करें। ये बात है बंबई जनवरी 9, 1977। श्रील प्रभुपाद भोर होने के पूर्व ही प्रातकालीन भ्रमण के लिए चल पड़े। उन्हें तथा भक्तों को हरे कृष्णा लैंड से सार्वजनिक सड़क तक का रास्ता मालूम था। वे बाहर निकले, बाएं मुड़े, फिर दाहिने मुड़कर उस भवन खंड को पार करने लगे जिससे होकर रास्ता सागर तट को जाता था। आकाश मंडल प्रकाशित होने लगा। पहले तो वे स्थल से समुद्र को और समुद्र से आकाश को विलग नहीं देख पाए, किंतु धीरे धीरे रंग की सूक्ष्म छवियों से क्षितिज का आभास होने लगा और उन्हें अरब सागर का विस्तृत मैदान दिखाई देने लगा, जो अपने से भी अधिक विस्तृत आकाश रूपी सागर से मिलने के लिए फैल रहा था। तारे टिमटिमाकर अस्त हो रहे थे। जब प्रभुपाद अपनी छोटी शिष्य मंडली के साथ विस्तृत सागर तट पर टहल रहे थे तो उनकी बाईं ओर झुके हुए ताड़ों की पंक्ति थी और दाईं ओर गरजती फेनिल उतार तरंगे थी। थोड़ा डिफिकल्ट हिंदी है, लेकिन एक प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से प्रभुपाद डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे जहां पर भी हो, ये प्रभुपाद के जीवन में नियम था। और फिर प्रभुपाद अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और जुहू के तट पर, जुहू में एक जो बड़ा लैंड लिया गया था, वहां से समुद्र तट की ओर अरब सागर की ओर वहां पर गए, और फिर उसका बहुत ही अच्छे ढंग से किस प्रकार से दूर से देख प्रतीत होता था आकाश और समुद्र मिल रहे हैं, क्षितिज उसको कहा जाता है, जहां पर आकाश और समुद्र या धरती मिलती हुई प्रकार प्रतीत होती है, बहुत सुंदर दृश्य लगता है। और लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि श्री प्रभुपाद अपने नियम के पक्के थे मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए, कि स्वास्थ्य के प्रति भी, हालांकि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना में थे, लेकिन स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस ड्यूटीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए, परस्यू करने के लिए, इस बात के लिए भी सजग या जागृत, मतलब इस विषय में भी वो विचार करते थे या कॉन्शियस रहते थे इस विषय के विषय कि किस प्रकार से मुझे जो रेगुलेटेड अमाउंट में इसका ध्यान रखना है ताकि अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस ड्यूटीज को हम अच्छे तरीके से कर पाए और उसमें शरीर का अस्वस्थ होना एक बाधा ना बने। शरीर तो देखिए एक दिन नष्ट होगा ही, एक दिन अस्वस्थ होगा ही, लेकिन फिर भी उसको जानबूझ के ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए कि वो समय से पहले अस्वस्थ हो जाए या समय से पहले हम शरीर छोड़ दें। तो इसीलिए इसका एक जीवन में रेगुलेटेड लाइफस्टाइल होना बहुत आवश्यक है ताकि हम अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस की बहुत और या सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे ढंग से कर पाए और शरीर का बीमार होना उसमें एक बाधा ना बने। और जब समय के साथ वे अल्टीमेटली तो एक दिन ऐसा आएगा ही, तब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का हमेशा गायन करते रहें और संघर्ष करते रहें। हरे कृष्ण। आगे लिखते हैं, श्री प्रभुपाद अपने कंधे के ऊपर स्लेटी ऊनी चादर, केसरिया रंग का रेशमी कुर्ता तथा धोती और हल्के लाल रंग के किरमिच के जूते पहने थे। वे एक छड़ी का भी इस्तेमाल कर रहे थे किंतु उस पर जोर देकर नहीं वरन हल्के से झुकते थे। वे तेजी से ढक बढ़ते तो छड़ी को आगे ले जाकर बालू में गड़ा देते थे और फिर उठा लेते। इस प्रकार वे लय पूर्वक ढक भर रहे थे। वे तन कर चलते थे और सिर को ऊंचा उठाए थे। आप देखा होगा श्री प्रभुपाद के चलने का एक अलग ही तरीका था क्योंकि वे हमेशा सर उठाकर चलते थे क्योंकि वे अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए इस बात का ऐसा नहीं कह सकते कि उनको गर्व था या अभिमान था, लेकिन हाँ ये जरूर था कि हम क्योंकि हम सबसे महत्वपूर्ण चीज और सबसे बढ़िया चीज लोगों को दे रहे हैं तो उस बात का एहसास या उसको कॉन्फिडेंस, यस कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, विश्वास था इस बात का, विश्वास था और इसीलिए वे हमेशा सर उठाकर चलते थे और या तन कर चलते थे, सिर को वे तन कर चल रहे थे और सिर को ऊंचा उठाए थे। तो कृष्ण के एक सही प्रतिनिधि होने का विश्वास था उन्हें। आगे, तब बंबई के लोगों की एक लंबी पंक्ति दिखाई दी, उनमें जुहू में रहने वाले कई धनी व्यक्ति थे। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने ग्रुप के साथ जा रहे थे और तो कई धनी धनाढ्य व्यक्ति रहीस व्यक्ति भी अपने ग्रुप के साथ मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो वे जो प्रातःकालीन भ्रमण के लिए आए थे। कुछ नारियल वालों ने अपने ठेले लगा लिए थे। चुने हुए नारियलों के सिरे का थोड़ा सा हिस्सा काट कर वे प्रथम ग्राहकों की प्रतीक्षा में थे, फर्स्ट कस्टमर। श्री प्रभुपाद को सवेरे इस समय घूमना पसंद था और यदि मौसम अच्छा होता तो वे घूमने अवश्य निकलते थे, चाहे वे विश्व के किसी कोने में हों। जैसा हम पहले चर्चा कर रहे थे, वे सवेरे हमें यदि मौसम अच्छा होता तो वे घूमने अवश्य निकलते थे, चाहे वे विश्व के किसी कोने में हों। किंतु जुहू का समुद्र तट उनके घूमने का विशेष प्रिय स्थानों में से था। रास्ते में सफेद कमीज और सफेद पैंट पहने डॉक्टर पटेल उनसे और उनके शिष्यों से आ मिले। उनके साथ अनेक मित्र थे जिनमें से अधिकतर डॉक्टर और वकील थे। श्रील प्रभुपाद मौन थे किंतु अब वे बोलने लगे। सामने के समुद्र तट की ओर संकेत करते हुए उन्होंने टिप्पणी की, हर चीज कितनी सुंदर है, आकाश को देखिए कितना निर्मल कितना सुंदर है, सब कृष्ण की कृपा है, पूर्णमिदम। अपने बेंत से उन्होंने लंबे शालीन ताड़ के वृक्षों की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, पेड़ को वृक्ष कहते हैं, वृक्ष योनि में जन्म लेने की निंदा की गई है, कृष्ण की योजना से वृक्ष भी बढ़िया ढंग से उगते हैं, वे सुंदर लगते हैं। तो डॉक्टर पटेल श्रील प्रभुपाद के बहुत अच्छे मित्र भी थे और उनसे काफी वार्तालाप किया करते थे। अगर आपने मॉर्निंग वॉक्स वगैरह सुने होंगे तो डॉक्टर पटेल के साथ उनकी काफी चर्चाएं और बेसिकली मेनली जुहू में उनके काफी वार्तालाप हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें हम शेयर करना चाह रहे थे, सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्रभुपाद प्रशंसा कर रहे हैं कि हर चीज कितनी सुंदर है, आकाश को देखिए कितना निर्मल कितना सुंदर है, सब कृष्ण की कृपा है, पूर्ण विदम कि सब कुछ पूर्ण है। और फिर वे बताते हैं कि पेड़ को वृक्ष कहते हैं, जब उन्होंने ताड़ के वृक्षों की संकेत किया, वृक्ष योनि में जन्म लेने की निंदा की गई है। तो वृक्ष का अर्थ होता है जिसको अल्टीमेटली कटना है, एक दिन जिसका कटेगा। और भगवद गीता के 15 अध्याय में इस भौतिक जगत की तुलना भी वृक्ष के साथ की गई है कि उसमें बताते हैं ये भौतिक जगत एक ऐसे वृक्ष के समान है, एक जो जो कि परवर्टेड यानी उल्टा है। और अगर उसको देखें तो इससे देखें कि वृक्ष की क्या डेफिनेशन है कि वृक्ष को अल्टीमेटली एक दिन कटना ही है, जिसको एक दिन कटना है पेड़ को वृक्ष कहते हैं, अल्टीमेटली उसको काट दिया जाएगा। तो इस भौतिक यानी कि इसको इस प्रकार से समझते हैं कि उसका भाव वो टेम्परेरी है, शाश्वत नहीं है, अल्टीमेटली उसको कटना ही है। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करना चाह रहे थे कि वृक्ष के योनि की निंदा की गई है थोड़ा उसके विषय में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कि वृक्ष अगर देखा जाए तो उसकी लो कॉन्शियसनेस के कारण उसकी उस योनि की निंदा की गई है। क्योंकि और फिर वृक्ष को जब अगर किसी को वृक्ष योनि प्राप्त होती है तो सर्दी हो तूफान हो गर्मी हो उसको ऐसे ही अवस्था में खड़ा रहना चाहता है पड़ता है, और उसको किसी भी प्रकार के कोई वस्त्र कोई कमरे की आवश्यकता नहीं होती। एक तरह से देखा जाए तो उसको कहा जा सकता है कि नग्न अवस्था में वृक्ष खड़ा है, उसको सर्दी गर्मी तूफान सब कुछ सहन करना पड़ रहा है और वो वहां से हिल भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता, ऐसा लगे बारिश आ रही तो किसी शेड के नीचे चला जाए नहीं कर सकता, उसमें इतनी चेतना भी नहीं है और उसमें मूवमेंट भी नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर पाए। तो चेतना की जब हम बात करते हैं तो 5 प्रकार की चेतनाओं की स्तर बताए जाते हैं जी चेतना के। तो सबसे पहले आच्छादित चेतना, जो पूर्ण रूप से आच्छादित मतलब कवर हो चुकी है, पूर्ण रूप से उसको ढक लिया गया है, अब उसमें किसी भी प्रकार की चेतना ही नहीं है। और तो ये किसमें होती है? ये वृक्षों में पाई जाती है, पत्थरों में पाई जाती है और छोटे जो प्लांट्स हैं वृक्ष हैं उनमें इस प्रकार की चेतना होती है कि अब चेतना उनमें है तो सही लेकिन वो पूर्ण रूप से ढक ली जा चुकी है। और उस चेतना को पूर्ण रूप से ढकने का क्या मतलब है कि वे पूर्ण रूप से भूल चुके हैं अपने भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को। हर जीव तो है उसमें, जीव है, लेकिन जैसे योनियों 84 लाख प्रकार की योनियों में वृक्ष भी एक प्रकार की योनि बताए जाते हैं, तो उनमें भी चेतना है लेकिन वो चेतना इतनी ढक ली जा चुकी है कि अब वो अपने भगवान के साथ शाश्वत संबंध को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। अब उनके वे कितना भी प्रयास कर लें क्योंकि उनकी चेतना अब भौतिक रूप से इतनी कवर कर ली जा चुकी है कि वे अपने आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं पहचान सकते। अब उनको जैसे जो बताते हैं कि एक जब किसी को कोई शरीर प्राप्त होता है तो उसके शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। तो वो परिवर्तन सबसे पहले जन्म के बाद उसका विकास होना, विकास के बाद उसको मेंटेन करना यानी कि पालन करना, पालन करने के बाद और नए संतान उत्पत्ति करना और फिर उसका विनाश शुरू हो जाता है और अंत में उसका समापन हो जाता है या अंत में वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये 6 प्रकार के जो एक जीव के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस बताई जाती है। तो वे जब किसी को इस प्रकार की चेतना या इस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है तो वह सिर्फ इनके यही कार्य कर सकता है, वो उसके जीवन में सिर्फ यही 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, वो इससे ज्यादा और कोई कार्य नहीं कर सकता। और पूर्ण रूप से उनकी चेतना इनर्ट हो जाती है और वे अब अपने जो आध्यात्मिक चेतना है वो बहुत फाइन है और यहाँ पर वे उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस जो कंडीशन को सबसे जो वृक्ष के योनि को प्राप्त करना सबसे निम्न योनि का माना गया है। और इसमें और एग्जाम अगर शास्त्रों में हम एग्जाम्पल देखें तो ऐसी जो योनि प्राप्त हुई किसको, बहुत फेमस एग्जाम्पल है नल कुबेर और मनी ग्रीव को जो कि कुबेर के पुत्र थे, और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि ऐसी योनि किस कैसे प्राप्त होती है। नल कुबेर और मनी ग्रीव को ऐसी योनि इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि वो स्त्री का संग कर रहे थे, और जब एक भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि उस स्थान से निकले तो उन्होंने उनकी प्रेजेंस को भी रिस्पेक्ट नहीं किया उनको, और अपने शरीर को कवर नहीं किया, अपने शरीर को ढका नहीं। हालांकि स्त्रियों ने इस बात को जान लिया और अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन वे इंद्रिय तृप्ति के कारण इतने मदमस्त हो चुके थे कि वे इस बात को भूल गए कि एक साधु संत के सामने हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, एक भगवान के शुद्ध भक्त के सामने अपने अपीयरेंस को किस प्रकार हमें प्रकट करना चाहिए, और वे अपने शरीर को नहीं ढक पाए। तो नारद मुनि, उनके नारद मुनि भक्त हैं भगवान के, तो उनकी उनके फल के लिए, उनके फायदे के लिए नारद मुनि ने उनको श्राप दिया, क्योंकि आपकी चेतना एक मनुष्य जीवन में पाकर भी आपकी चेतना क्योंकि इस प्रकार से हो चुकी है कि आप एक पेड़ की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो आप वृक्ष बन जाएं, आप पेड़ बन जाएं, ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन उनको अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ, और नारद मुनि की कृपा के कारण ही वो पेड़ की योनि में रहकर भी इस बात को याद रख पाए कि, और वो भगवान की भक्ति के विषय में सोच पाए, और तब उनको नारद मुनि की कृपा के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के आंगन में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अवतरण हुए थे, उसके आंगन में उनको वो पेड़ की योनि प्राप्त हुई। लेकिन साधारणतः हर पेड़ इतना खुशनसीब नहीं होता, तो हमें विचार करना चाहिए कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को किस प्रकार से मेंटेन करना है ताकि हमें ऐसा योनि नाम प्राप्त हो। लेकिन हाँ, भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से हम इस से बच सकते हैं, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें या ऐसी कोई ऑफेंस या अपराध ना करें जिसके कारण हमें ये योनि प्राप्त हो। तो सबसे पहले आच्छादित, तो उसके बाद जो दूसरी चेतना बताती है संकुचित चेतना। संकुचित मतलब जो थोड़ी सिकुड़ी हुई है, थोड़ा सा उसके अंदर विकास है, हल्का सा, कि कैसे किस प्रकार से, कि ये बेसिकली बताई जाती है जानवरों के अंदर। और इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, एक अगर हम बंदर का एग्जाम्पल लें तो उसके हिसाब से किस प्रकार से उसकी चेतना, हालांकि वो आहार निद्रा भय मैथुन के कार्य भी कर सकता, इसलिए विकसित है क्योंकि वो आहार निद्रा भय मैथुन के कार्य कर रहा है। पेड़ ये सब कार्य नहीं कर पाता, लेकिन ये बंदर अपने आहार को किस प्रकार से अरेंज करना है, एक बंदर का एग्जांपल है कि अरेंज करना है, कैसे सोना है और मैथुन करना, और ये सब इसके अलावा थोड़ी सी विकसित इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से उनकी इस कॉन्शियसनेस में, अगर आपने देखा होगा मदारी किस प्रकार से बंदर को ट्रेन कर देता है, तो वो लोगों के सामने हाथ जोड़ना, कलाबाजी खाना, तो इस प्रकार से उनके सामने नमस्ते करना, पैसे मांगना, और कोई उनको पैसे देना, उसको धन्यवाद करना, तो ये किसी भी और जो अदर जानवर से उनको भी देखा होगा, जो एनिमल्स हैं उनको भी किस प्रकार से ट्रेन किया जा सकता है, तो ये उनकी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी विकसित है कि वो इस प्रकार से समझते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ भला किया है, मुझे खाने को दे रहा है, तो वो उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो ये इस प्रकार से कॉन्शियसनेस थोड़ी सी उनकी डेवलप कॉन्शियसनेस है। हाँ, लेकिन फिर भी वो इतनी डेवलप नहीं है, इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो भगवान को समझ सके, ये जान सके कि भगवान को कौन है और भगवान के साथ अपने संबंध को जान सके। तो ये इसलिए विकसित, संकुचित, लेकिन थोड़ा सा इसमें पेड़ के आधार से थोड़ा सा इसमें विकास है। और फिर आगे मुकुलित चेतना, बडिंग कॉन्शियसनेस। तो यहां से जो आगे की तीन चेतनाएं हैं वे मनुष्य में शुरू होती हैं, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। तो ये मनुष्य की चेतनाओं के स्तर है, यहां से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो बडिंग कॉन्शियसनेस सबसे पहले कि अगर आप देखेंगे बर्ड क्या मतलब, कि जिससे फूल का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है। अभी वो पूर्ण रूप से फूल का उसमें विकास नहीं हुआ है, लेकिन उससे उसमें ऐसा पोटेंशियल है कि वह फूल बन सकता है। तो ये बडिंग कॉन्शियसनेस, जिसको कि मुकुलित चेतना कहा जाता है, कि अब इसमें इससे आगे ये प्रगति करके आगे अपनी चेतना को विकसित कर सकता है और फिर उसको पूर्ण रूप से विकसित कर सकता है। विकसित चेतना मतलब अनफॉल्ड कॉन्शियसनेस, अब उसको एहसास हो रहा है अपने स्वरूप का, थोड़ा उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है अपने स्वरूप का, भगवान का। और पूर्ण विकसित चेतना जो भगवान के भक्तों के अंदर, जो अपने जो पूर्ण रूप से अपने संबंध को जान चुके हैं, जो पूर्ण रूप से अपने साथ भगवान के संबंध को जान चुके हैं, तो ये इस प्रकार से पांच प्रकार की चेतनाएं होती हैं। और इसलिए यहाँ पर जो वृक्ष है उसकी उसको, क्योंकि सबसे निम्न योनि की चेतना है, उसको उसकी निंदा की गई है। तो फिर आगे डॉक्टर पटेल कहते हैं कि वे सब कृष्ण के प्रतिनिधि हैं और सब कुछ पूर्ण है। ईशोपनिषद से उद्धरण करते हुए श्री प्रभुपाद ने कहा, पूर्णम पूर्णम इदम पूर्णम अदा। श्री प्रभुपाद ने नास्तिकों की विचारधारा के विरुद्ध बोलते हुए कि इस जटिल भौतिक सृष्टि का कोई सृष्टा नहीं है, बताया कि जिस तरह उगता हुआ सूर्य प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करता है, उसी तरह यह संसार भगवान की सृष्टि है। उन्होंने कहा, भगवान की सृष्टि पूर्ण है क्योंकि इसकी उत्पत्ति भगवान से हुई है, जो स्वयं पूर्ण है। अंडा तरस्थ परमाणु क्षयं तरस्थम गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। परमाणु का अर्थ है अणु, अणु से भी छोटा। छह परमाणुओं से एक अणु बनता है, अणु का यही आकार है। आप छह परमाणुओं को मिला दें, उस एक परमाणु में भी परम ईश्वर का निवास है। तो भगवान हर जगह विद्यमान है। अंडा तरस्थ परमाणु चयन तरस्थम, एक अणु के अंदर भी और उससे छोटा परमाणु भी, छह परमाणुओं से एक अणु बनता है, उसके अंदर भी भगवान विद्यमान है। डॉक्टर पटेल कहते हैं, उन्होंने इसे बनाया और तब उसने इसमें प्रवेश किया, वेद यही कहते हैं। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, परमात्मा हर वस्तु में है। पूरे मानव जीवन का उद्देश्य यह सब समझना और ईश्वर का गुणगान करना है, और मनुष्य सुअर जैसा जीवन बिताकर उसे नष्ट कर रहा है। तो ये प्रभुपाद अल्टीमेटली इसको बता रहे हैं, जिनकी चेतना मनुष्य जीवन पाकर, मनुष्य जीवन, हम सबको सौभाग्यवश मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें भगवान को समझना और उसका गुणगान करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और फिर ईशोपनिषद के श्लोक को कोट करते हुए श्री प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन जिनको प्राप्त हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम सबको, जैसे भगवान पूर्ण है तो उनकी सृष्टि पूर्ण है। हमें ओम पूर्णम अदा पूर्णम इदम पूर्णम अदा पूर्णम 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 पूर्णा पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य एव आदाया पूर्णम एव वशिष्यते। तो ये पूरा श्लोक है ईशोपनिषद के, ईश स्तुति श्लोक है। तो भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, यानी जो भी पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ है वह पूर्ण है। चूंकि वे संपूर्ण है अतः उनसे यत भी ना जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उत्पन्न होती हैं तो भी वह पूर्ण रहते हैं। जिस प्रकार से ये भगवान का देखा जाए कि भगवान हमेशा पूर्ण है, उनसे असंख्य कोटि ब्रह्मांडों की निरंतर रचना हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन पे कुछ घट जाता है, उनमें वे हमेशा पूर्ण रहते हैं। लेकिन जो हम चर्चा करने चाह रहे थे, मनुष्य जीवन भी किस प्रकार से जीव या जीव को किस प्रकार की फैसिलिटी भगवान ने दी है, वो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। छोटी पूर्ण इकाइयां यानी जीव को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे उस पूर्ण परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। कि हमारे पास सभी फैसिलिटीज हैं, सभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो ये ह्यूमन शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये एक पूर्ण रूप से फैसिलिटी है। ह्यूमन शरीर प्राप्त, मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम भगवान के अपनी चेतना को पूर्ण विकसित कर सकते हैं। अभी हमारी चेतना, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है लेकिन उसमें किस स्तर का जीवन कर रहे हैं उस प्रकार से हमारी चेतना होगी। जैसे नल के वेल और मनी ग्रीव का एग्जाम्पल अगर लें तो वे हालांकि मनुष्य शरीर में थे लेकिन उनकी चेतना किस प्रकार से थी, वृक्ष के समान चेतना यानी पूर्ण रूप से आच्छादित चेतना। तो जिस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से फैसिलिटी है हमारे पास कि जिससे हम पूर्ण परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से भगवान का ज्ञान नहीं है। और भगवान का पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, अभी हमने चर्चा किया, श्री प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करके हमें वो ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। रेस्ट ऑफ द रेस्ट अपॉर्चुनिटी 84 लाख योनियों प्राप्त होने के बाद यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, अगर वो अपॉर्चुनिटी को खो देता है, तो एक बार हम एक संत के माध्यम से सुन रहे थे, वो एग्जांपल बता रहे थे कि ये इसी प्रकार से है जैसे कई बार फेस्टिवल्स के दौरान वो मटकी फोड़ खेल खेल के खेला जाता है ना, तो मटकी बांध दी जाती है और व्यक्ति के हाथ में पट्टी बांध दी जाती है, उसके हाथ में डंडा है। तो बोले इसी प्रकार से 84 लाख प्रकार के दरवाजे हैं और आपकी आंख में पट्टी बंधी हुई है, आप वो डंडे से टच करके वो दरवाजा खोल रहे हैं। और मान लीजिए जब आपके पास वो एक दरवाजा जो खुलना था, मनुष्य जीवन का दरवाजा वो खुलना था और उसको आपने संभव मिस कर दिया किसी कारणवश से, तो अब आपको क्या है, अब वो पीछे छूट गया, अब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, उस चक्कर में आप फंसते, वो फिर आपको चक्कर पूरा लगाना पड़ेगा एक बार मनुष्य जीवन हाथ से अगर निकल गया तो, क्योंकि आपके हाथ में पट्टी बंधी हुई है वो डंडे के माध्यम, अब आप देख नहीं सकते वो निकल गया है, तो अब वो मौका हाथ से गवा दिया। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं जो मनुष्य इस जीवन की अनुभूति नहीं, जो मनुष्य अपनी चेतना परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। तो फिर पुनर्भिजन्म पुनर्भिमन 84 लाख प्रकार की ये जो योनियां हैं उसमें वो विकास, वो फिर वो चेतना का विकास जिस प्रकार से होगा उसमें वो चला जाएगा। तो अंत में बस थोड़ा सा कि किस प्रकार से हमें कंप्लीट फैसिलिटी दी गई है मनुष्य जीवन में, तो कि हम ये अपनी चेतना को पूर्ण विकसित कर सकते हैं, तो उसका बस कुछ शेयर करना चाहता कि हमें इस भौतिक जगत में किस प्रकार से वो फैसिलिटीज प्राप्त हुई है, पूर्ण फैसिलिटी है भौतिक जगत। कई बार हम बोलते हैं भौतिक जगत में फंस गए, लेकिन ये भौतिक जगत भी एक फैसिलिटी के समान है जिसके माध्यम से हम अपनी चेतना को पूर्ण विकसित कर सकते हैं। तो जब से सबसे पहले शरीर का एग्जाम्पल है, भगवान के द्वारा ये शरीर हमें दिया गया है, शरीर में इसका जो शरीर की शरीर में जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो पूर्ण रूप से अपना कार्य कर रही हैं, उसके लिए हमें कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या हमें चिंता करने की जरूरत पड़ती है कि हमारे शरीर पर बाल उग रहे हैं, वो स्वतः ही उग रहे हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं वो स्वतः ही डाइजेस्ट हो जाता है भगवान की कृपा से, भगवान जठरारोग्य के रूप में हृदय में विद्यमान है, शरीर अपने आप बढ़ रहा है, तो ये शरीर के अंदर केमिकल प्रोसेस अपने आप चल रहे हैं। तो ये भगवान का के माध्यम से एक फैसिलिटी हमें दी गई है जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा, हमें सिर्फ इसको भोजन देने की आवश्यकता है और वो अपने आप अपना कार्य करेगा। तो ये एक प्रकार से एक हमें फैसिलिटी है। दूसरी फैसिलिटी हमें ग्रंथों के माध्यम से दी गई है कि जब इस सृष्टि में अनेक दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत भगवद गीता और श्री प्रभुपाद की कृपा के माध्यम से उनका इतना सरल भाषा में अनुवाद कर दिया गया ताकि हम उसको अपने जीवन में पढ़कर एक साधारण व्यक्ति भी, ये श्री प्रभुपाद की पुस्तकों की यही विशेषता है, हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, हालांकि हमने स्कूल में संस्कृत का अध्ययन तो किया होगा, लेकिन हम उसको एक संस्कृत पुस्तक को पढ़कर कैसे उसकी शिक्षाओं को आज के युग में अपने जीवन में अपनाना है ये हम अपने उसको समझ नहीं सकते, लेकिन श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की यही विशेषता है कि किस प्रकार से आज के आधुनिक जीवन में भी वे शिक्षाएं कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी व्यवहारिक है और उनको कैसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, ये श्रील प्रभुपाद ने आजकल के आधुनिक एग्जाम्पल के माध्यम से, आधुनिक शिक्षाओं के माध्यम से उनको हम समझाया है। तो ये वैदिक ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं ताकि हम ये एक प्रकार से कंप्लीट फैसिलिटी है ताकि हम इसका पूर्ण रूप से यूटिलाइज कर पाए। और सबसे बड़ी बात जो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक बुद्धि, विकसित बुद्धि प्राप्त हुई है जिससे हम इनको समझ सकते हैं। जैसे अगर बंदरों में भी बुद्धि होती है, जानवरों में भी बुद्धि होती है, तभी वो सीख पाते हैं, सर्कस के खेल को दिखा पाते हैं, बिल्ली इतनी समझदार होती है कि कब घर के अंदर जाना है जब मालिक नहीं होगा, तो वे बुद्धि भी है लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, लेकिन हमें यह विकसित बुद्धि प्राप्त हुई है जिससे हम शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और फिर देखा जाए तो इस जीवन का निर्वाह करने के लिए सभी प्रकार की फैसिलिटीज हमें दी गई हैं, वृक्ष हैं, जो कि हमें फल प्रदान करते हैं, अनाज उगता है, धरती धरती पर अनाज होता है। तो ये सारी फैसिलिटीज जो भगवान ने सृष्टि बनाई है, वो सारी फैसिलिटीज हमें दी गई हैं ताकि हम अपनी इन सभी फैसिलिटीज को इस भौतिक जगत में रहते हुए सभी फैसिलिटीज को यूटिलाइज करके हम अपनी उनका सही पर्पस के लिए, वो सही पर्पस क्या है, अपनी चेतना को विकसित करना और उसको पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाना। तो ये सब कर सकते हैं, इन फैसिलिटीज को यूटिलाइज करके। इसके ऊपर और बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन समय हो गया तो मैं यहीं पर विराम दूंगा कि हमारे पास, और आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि ये जो हमें फैसिलिटी प्राप्त हुई है उसका हम अच्छे ढंग से यूटिलाइज करें, श्री प्रभुपाद की शरण ग्रहण करें और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।